हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगर वो राक्षस उसकी बेटी के परीलोक में जाने से पहले पूरी तरह से होश पर आ गया होता तो शायद उसकी बेटी के लिए भी मुश्किल बढ़ सकती थी। लेकिन तारा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बेटी हर मुश्किल से निकलने में अब पूरी तरह से समर्थ थी। अब क्योंकि अमन की शक्तियों की वजह से उसकी आंखों में चुभन होने लगी थी, तभी तारा अचानक अपनी जिन अंश यानी अपनी बेटी तराना को लेकर अमन के पास गई थी और उसका हाथ पकड़ लिया था। अब जैसे ही तारा ने अमन का हाथ पकड़ा और इस बार अमन ने अपनी शक्तियों के द्वारा चारों तरफ देखना शुरू किया, जल्दी ही उसे एक अनजान काली परछाई दिखाई दे गई। उस परछाई को देखने के बाद अमन ने अपना जोर लगाकर अपनी सारी शक्तियों का उस पर प्रयोग किया, जिसका उस परछाई पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अब तो अमन पूरी तरह से हैरान था और वो तारा की ओर देखकर कहने लगा, ये कैसी परछाई है जिस पर मेरी शक्तियों का किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है? जबकि अगर मेरे सामने कोई भी काली शक्ति होती तो इस वक्त वो मेरे गुस्से की आग से जलकर राख हो जाती। लेकिन ये शक्ति क्या है? शक्ति के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है? अमन कहीं ना कहीं उस वक्त काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे तो राक्षस के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उसकी बीवी के पीछे कैसा राक्षस पड़ा हुआ है जो जन्म जन्मों से उसके जिस्म का प्यासा है। अब तो अमन काफी हैरान था और तारा से कहने लगा, आखिरकार इसमें मेरी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है? तभी तारा ने बेचैनी से अपनी बेटी की ओर देखा। अचानक तारा की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू मोती बनकर जैसे ही उसकी बेटी के ऊपर गिरे, अचानक से उसकी बेटी ने अपने नन्हे के हाथों से तारा की उंगलियों को पकड़ लिया। अब जैसे ही उसने तारा की उंगलियों को पकड़ा और तारा ने क्योंकि अमन का हाथ पकड़ा हुआ था तो उसके बाद जैसे ही अमन ने पूरा जोर लगाकर एक बार फिर उस राक्षस की ओर देखा, अब वो परछाई वहां से गायब होने लगी। तब अमन काफी ज्यादा खुश हो गया और कहने लगा, मेरी शक्ति उस पर काम कर रही है, वो परछाई अब धीरे धीरे गायब होने लगी है। अब जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा का मुंह हैरानी से खुला रह गया और तब उसने अपनी बेटी की ओर देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके गालों पर पड़ने वाले क्यूट और गहरे से डिम्पल तारा को उसकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित कर रहे थे। तभी तारा ने अपनी बेटी का ढेर सारा शुक्रिया अदा किया। वो समझ चुकी थी कि वो काली परछाई जो वहां से गई है सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी की वजह से गई है, जो कि शायद अपनी माँ के आंसुओं को समझ चुकी थी और इसीलिए उसने अपनी माँ की मदद की। कहीं ना कहीं तारा इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। और फिर जल्दी ही देखते ही देखते वहां पर जितनी भी काली शक्तियां थीं वो सभी एक करके वहां से जाने लगी। अमन ने अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा अपनी आंखों में अंगारे बरसाकर चारों तरफ देख लिया और जब उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तब उसे वो कमरा तराना के लिए एकदम सेफ लगने लगा। तब अमन थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो गया और नॉर्मल होकर उसने अपनी प्यारी बीवी और साथ साथ अपनी खूबसूरत सी बेटी तारा को देखा और फिर अमन ने जल्दी ही उसे गले से लगा लिया और उसके माथे तारा के माथे पर किस किया और साथ ही साथ अपनी बेटी के गालों को भी उसने चूम लिया। और जल्दी ही अमन की आंखों में हल्की हल्की लाली आने लगी। तभी तारा समझ चुकी थी कि अमन इस वक्त रो रहे हैं। तभी तराना का हाथ पकड़ लिया और तब अमन अपने आप को रोक नहीं पाया और कहने लगा, तारा मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन जब से मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई है मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो गई है। मुझे रह रहकर ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी ने मेरे घर में जन्म लेकर शायद अपने लिए मुसीबतें मोल ले ली हैं। तुम तो जानती हो मेरे पीछे कितनी सारी काली शक्तियां पड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, हजारों करोड़ सफेद जिन्नातों की पूरी उम्मीद अब मेरी बेटी से लग चुकी है। मेरी नन्ही सी जान, मेरी बेटी आखिरकार कैसे सबका मुकाबला करेंगी और कैसे वो सब चीजों के बारे में सोचेगी? इस वक्त मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा तारा, मैं क्या करूं? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी बेटी को सभी जिन्नातों से कहीं दूर लेकर चला जाऊं, क्योंकि इस वक्त मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब हो चुकी थी। तब अमन की बात सुनकर तारा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप अमन? आप अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेटी बहुत जल्द सारी चीजें अच्छी तरह से सोच समझ लेगी और वो एक बहुत ही अच्छी जिन रक्षक भी जरूर बनेगी। अब जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन का दिल एक बार फिर भर आया और उसने अपनी बेटी तराना को एक बार फिर गले से लगा लिया। और तब अचानक अमन और तारा के कानों में अपनी बेटी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी और वो दोनों अपनी बेटी को इस तरह से खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए देखने लगे। और जैसे ही अमन तारा से हल्का सा दूर हुआ और कहने लगा, मैं मॉम और अमरेंद्र से मिलकर आता हूँ। जैसे ही उसने तारा को छोड़ा, अचानक से उसकी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। अब जैसे ही तारा ने ये बात नोटिस की, वो पूरी तरह से हैरान हो गई और अमन से कहने लगी, अमन सर, आप एक काम कीजिए, प्लीज मेरे पास आइए। ऐसा कहकर वो अमन को अपने पास बुलाने लगी। जैसे ही तारा ने अमन का हाथ पकड़ा, एक बार फिर उसकी बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तब तारा को सारी बातें समझ में आ गई और वो कहने लगी, हमारी बेटी हमें एक दूसरे से अलग नहीं देख सकती, वो हम एक दूसरे के साथ देखना चाहती है। इसीलिए जब भी आप मुझसे थोड़ा सा दूर होते हैं या अलग होते हैं तो ये उदास हो जाती है, और लेकिन जब भी आप मेरे करीब होते हैं तो ये खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगती है। अब जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन की आंखों में चमक आ गई और कहने लगा, मेरी बेटी मुझ पर ही गई है, क्योंकि मैं भी तुमसे दूर होकर उदास हो जाता हूँ, और शायद इसीलिए मेरी बेटी को भी मेरा तुमसे दूर रहना पसंद नहीं है। ऐसा कहकर खुशी से एक बार फिर अपनी बेटी के माथे को चूम लिया। एक तरह से देखा जाए तो एकदम बिल्कुल कंप्लीट और बड़ी ही हैप्पी वाली फैमिली थी, लेकिन इस वक्त अपनी बेटी को लेकर तारा और अमन दोनों ही अपने अपने सिरे से पूरी तरह से परेशान हो रहे थे, क्योंकि अमन को इस बात का डर था कि उनकी बेटी इतने सारे जिन्नातों की रक्षा कैसे करेगी, कि उनकी बेटी थोड़ी ज्यादा खतरनाक राक्षस का मुकाबला कैसे कर पाएगी, आखिरकार कैसे। तारा और अमन, जो नए नए माता पिता बने थे, एक जिन और एक परी, अब दोनों ही अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता में पूरी तरह से डूब चुके थे। अपनी बेटी के जिंदगी में आने के बाद पहली रात दोनों ने अपनी बेटी के इधर उधर लेटकर साथ साथ उसका हाथ थामकर ही गुजारी थी। वहीं करिश्मा जी जैसे ही अगली सुबह उठी, वो सीधा तराना को देखने के लिए उनके कमरे में आ रही थी, और जैसे ही उसने बड़े ही प्यार से एक तरफ तारा को तराना का हाथ पकड़े हुए देखा और दूसरी तरफ अमन को तराना का हाथ पकड़े हुए देखा, तो अपने आप ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, और अब कहीं ना कहीं उन्हें तारा और अमन में अमरेंद्र और करिश्मा जी दिखाई देने लगे। जब अमन उनकी जिंदगी में आया था, तब एक तरफ अमन का हाथ करिश्मा जी ने थाम रखा था तो दूसरी तरफ अमन का हाथ अमरेंद्र जी ने थाम रखा था। दोनों इस तरह से खुशी के मारे पूरी रात नहीं सोए थे,
और तारा और अमन की आंखों को देखकर, उनकी खुशी के चेहरे की चमक देखकर, अब उन्हें भी यही लग रहा था कि लगता है ये दोनों भी पूरी रात नहीं सोए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वेल, तारा और अमन, अब अमरेंद्र और करिश्मा जी ने उन दोनों को परेशान करना जरूरी नहीं समझा और चुपके से अमरेंद्र जी का हाथ पकड़कर वो दोनों वहां से बाहर निकल गए और दोनों अपने अपने दिनों को याद करने लगे। अब अचानक करिश्मा जी के मन में आने लगा कि जिस तरह से तारा एक परी है, क्या हमारी जिनांश भी एक परी होगी, क्योंकि करिश्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जिनांश के अंदर कितनी सारी शक्ति आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो सोच रही थी, क्या उसके अंदर तारा परी की शक्तियां भी आएंगी, क्या वो भी आकाश की सैर कर पाएगी। कहीं ना कहीं इस वक्त उनके मन में कितने सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन फिलहाल उसने सोचा कि इस तरह से उसे अपने सर में दर्द नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों को सोचकर उसने अभी सारी चीज़ों के बारे में तारा से डिस्कस करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि क्या उसकी बेटी भी एक परी होगी। सोचते हुए करिश्मा जी ने अपनी सोच को झटक दिया और वो तारा और अमन के उठने का इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी ओर जंगलों में काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ टहल रही थी, क्योंकि उसने जो 3 साल का अंश को मारने के लिए भेजा था वो कब का उसके पास वापस आ चुका था। अमन के अपनी आंखों में आग लगते ही वो तुरंत उसके पास वापस आ गया था, क्योंकि वो अमन की आंखों की ताकत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया था, और जैसे ही वहां पर उसने सारे बर्तन के बारे में खुशी से पूरी तरह से भर चुकी थी, उसका दिल तो क्या बेकार में उसने खमाखा अमित के अंश को पाला है। भले ही वो अमित की माँ थी, लेकिन अगर काली शक्तियों के महागुरु ने उसे अपने जाल में ना फंसाकर उसे सफ़ेद जिन यानी अमरेंद्र जी के पास ना भेजा होता तो अमित कभी भी पैदा नहीं होने वाला था। लेकिन इसमें सारी चाल सिर्फ और सिर्फ काली शक्तियों के महागुरु की थी, क्योंकि वो सफ़ेद जिन्नातों के अंश यानी कि अमरेंद्र जी को सबक सिखाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह से चाल सली थी और अमित की माँ को एक बड़ी सी खूबसूरत सी औरत का भेस बनाकर अमरेंद्र जी के सामने परोस दिया था, और अमरेंद्र जी भी उसे देखकर अपने होश खो बैठे थे और उसके साथ हर तरह से उन्होंने रिश्ता कायम कर लिया था, जिसका नतीजा अमित था। लेकिन अमित को पाने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो गई थी, पर क्योंकि उसने काली शक्तियों का एक रूल तोड़ा था जिसके बाद उस औरत को अब हमेशा के लिए जंगलों में ही रहना था, तो इसीलिए वो अमित से काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि कोई भी काली शक्ति की औरत सफेद जिनका अंश पैदा नहीं कर सकती है। अगर वो इस तरह की कोई हरकत करती है तो इसके लिए उसे हमेशा के लिए काली शक्तियों के जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां पर वो रोध होकर किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार देती है। लेकिन काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ ने ये नहीं चुना था। जब मल्लिका ने उन्हें अमित का अंश दिया तब वो उसे देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि उसे बड़े ही स्ट्रांग स्मेल अपने खून के उसमें से आ रही थी, तो वो समझ चुकी थी कि ये स्मेल कोई आम स्मेल नहीं है और ये अंश अमित का अंश है, इसीलिए उसने अपने पास रखना स्वीकार किया था। लेकिन अब जो कि वो वापस लौट आया था, वो जिनांश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था, तो वो गुस्से से भर उठी थी। तभी उसने अपने बेटे को यानी कि अपने उस अंश को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए एक नया रास्ता खोज निकाला था। वो समझ चुकी थी कि जिनांश की जान इस वक्त नहीं ली जा सकती है, क्योंकि वो जादुई शॉल में है, ऊपर से अमन यानी कि जिन महाराज उसके साथ है, जो आसानी से किसी भी काली शक्ति को पहचान सकता है, तो इसीलिए उन्होंने उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए बड़े से बरगद के पेड़ के अंदर भेज दिया और उसे कुछ ऐसे दो मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा, जिसका उच्चारण करने से उसके शरीर में इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि वो आसानी से सफेद जिन का सामना कर सकता था। इस तरह से वो डरकर तो किसी कीमत पर नहीं भाग सकता था और साथ साथ उसके अंदर साहस आ जाएगा। वो छोटा सा बच्चा इस वक्त कुछ कभी गलत सही नहीं जानता था। उसके सामने अगर कोई थी तो एक ऐसी बदसूरत सी औरत थी जो उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती थी, इसीलिए वो भी अपने आप को उसे पूरी तरह से समर्पित कर चुका था। जो कुछ भी काम उसकी दादी यानी कि अमित की माँ कहेगी, वो उसे हर हाल में करना ही था। तब काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ ने उसे पेड़ के अंदर भेज दिया और उसे पूरे के पूरे 19 वर्षों तक तप करने के लिए कह दिया। अब काली शक्तियों के मालिक अमित के दोनों बेटे अलग अलग कड़ी तपस्या में लीन हो चुके थे। एक बेटा बरगद के पेड़ के अंदर था तो दूसरा बेटा पीपल के पेड़ के अंदर तप करने वाला था, तो दूसरा बेटा 21 वर्षों तक कड़ा तप करने वाला था। एक को काली शक्ति के महागुरु ने भेजा था तो एक को अमित की माँ ने भेजा था। अब तो आगे क्या होने वाला समय ही बताने वाला था कि उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाला था।